नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 4 सहकारी बैंकों पर 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें चेन्नई स्थित तमिलनाडु स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक पर 16 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। RBI ने सोमवार को जारी विज्ञप्ति में कहा, बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर 13 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि यह निर्धारित अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में पात्र राशि को स्थानांतरित करने में विफल रहा और उसे देरी से स्थानांतरित किया गया। बैंक ने एक अन्य विज्ञप्ति में कहा, पुणे स्थित जनता सहकारी बैंक पर जमा पर ब्याज दर के निर्देशों का पालन नहीं करने पर 13 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तमिलनाडु स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि ये निर्धारित अवधि के भीतर पात्र राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित करने में विफल रहा। ये निर्धारित समय सीमा के भीतर धोखाधड़ी की सूचना नाबार्ड को देने में भी विफल रहा और देरी से इसकी सूचना दी। कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए राजस्थान के 12 स्थित 12 नागरिक सहकारी बैंक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम का पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में कुल प्रीमियम 17% बढ़कर 2.32 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC ने सोमवार को एक बयान में ये जानकारी दी। वित्त वर्ष 2021-22 में LIC का कुल प्रीमियम संग्रह 1.99 लाख करोड़ रुपए रहा था। बीमा प्रीमियम के संग्रह के मामले में LIC मार्च 2023 के अंत में 62.58% बाजार हिस्सेदारी के साथ देश की अव्वल बीमा कंपनी रही। जीवन बीमा परिषद के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष के अंतिम महीने मार्च में निजी बीमा कंपनियों के प्रीमियम संग्रह में भी खासा उछाल दर्ज किया गया। सूचीबद्ध बीमा कंपनियों में से LIC के समाप्त वित्त वर्ष में प्रीमियम वृद्धि दर HDFC लाइफ के बाद दूसरे स्थान पर रही। SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम वृद्धि दर क्रमशः 16.22% और 12.55% रही। मार्च 2023 में LIC का व्यक्तिगत खंड में प्रीमियम संग्रह 10,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो सभी जीवन बीमा कंपनियों में सर्वाधिक है। भारत में इस वर्ष 90% कर्मियों को अपने वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। सोमवार को जारी की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ADP रिसर्च इंस्टीट्यूट की पीपल एट वर्क 2023 अ ग्लोबल वर्कफोर्स व्यू रिपोर्ट में बताया गया, भारत में 90% कर्मचारियों ने इस साल वेतन वृद्धि की उम्मीद जताई है। इस सर्वे में शामिल लगभग 20% कर्मचारी 4-6% की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं 19% कर्मी 10-12% वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 78% कर्मियों के पिछले वर्ष औसतन 4-6% वेतन वृद्धि हुई थी। ये रिपोर्ट 17 देशों के 32,000 कर्मियों के सर्वे पर आधारित है, इनमें भारत के 2,000 कर्मी शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं देने वाली कंपनी इंफोसिस ने ऊर्जा एवं रसायन क्षेत्र की वैश्विक कंपनियों में से एक अरामको के साथ मानव संसाधन क्षेत्र में सहयोग को लेकर एक समझौता किया है। इंफोसिस ने सोमवार को बयान में कहा कि अरामको के मानव संसाधन प्रबंधन में प्रौद्योगिकी समर्थन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे अरामको को अफसरों के अनुकूल कर्मचारियों की तलाश में मदद मिलेगी। इंफोसिस ने कहा कि अरामको के साथ मिलकर वो मानव संसाधन से जुड़े आंकड़े और विश्लेषण में नई अंतर्दृष्टि लाने के लिए काम करेगी। इस समझौते के तहत कृत्रिम मेधा समाधान का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बयान के मुताबिक AI समर्थित विश्लेषण से अरामको को एल्गोरिदम की मदद से निर्णय लेने में मदद पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट और अमेरिकी मुद्रा में कमजोरी के बीच रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि विदेशी पूंजी की निकासी ने भी रुपये को प्रभावित किया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 81.95 पर खुला। शुरुआती सौदों में इसने 81.86 के ऊपरी स्तर को छुआ। रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 81.92 पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.02% की गिरावट के साथ 101.33 पर था। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.01% गिरकर $82.72 प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 412.27 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अस्थिरता देखने को मिली और मानक सूचकांक सेंसेक्स तथा निफ्टी सपाट खुले। दरअसल अर्थव्यवस्था में मांग परिदृश्य का आकलन करने के लिए निवेशक कॉरपोरेट नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। एक दिन पहले सोमवार को 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 60,000 के स्तर को पार कर गया था। हालांकि मंगलवार को इसमें गिरावट का रुख रहा और ये मामूली रूप से गिरकर 60,045.23 अंक पर आ गया। सेंसेक्स में शामिल 14 कंपनियों के शेयर लाभ में कारोबार कर रहे थे, जबकि 16 शेयरों में गिरावट रही। 50 शेयरों पर आधारित निफ्टी में भी मामूली गिरावट रही और ये 17,740.60 पर सपाट कारोबार कर रहा था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iJanSatta.com पर नमस्कार।